ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ राम हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्णा Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hari Nam Sankirtan Ki Gaur Premanande Hari Hari.
Hare Krishna.
Jaya Radha Madhava कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी बोलिए जय राधा माधव
कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय
राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंगन यमुना तीरावन चारीनंदन
व्रजन रंजन
यमुना तीरावन चारी सोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरावन चारी
यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Hare
Yashodanandana, Raja Jana Rangana, Yamuna Tiravana Chari.
हरि बोल कर गया हरि बोल पावन हरि नाम संकीर्तन के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय गौर प्रेमानंद हरि 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 गो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमावोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत करते हैं भागवत के दशम स्कंद के विविध लीलाओं के चर्चा में। कल हम लोग यज्ञिक ब्राह्मण और उनके धर्मपत्नियाँ जो भगवान कृष्ण के महान भक्त थी उनके बारे में चर्चा की थी, तो एक दो शब्द उसके बारे में बोलकर हम आगे गोवर्धन लीला में प्रवेश करेंगे आज। जब इंद्र नहीं तो ब्रह्मा जी जब यज्ञ करते हैं, भगवान विष्णु कभी कभी अपने आप को प्रकट करते हैं। बहुत समय यज्ञ करने के बाद, लेकिन इधर यज्ञ ब्राह्मणों के घर के पीछे जो बगीचा था उधर भगवान बुलाए बिना अपने आप आ गए। क्यों? अपने ही भक्तों के हाथ से प्रसाद प्राप्त करने के लिए। इससे हम लोग क्या सीखते हैं? अगर प्रेम से कोई भगवान को पुकारेगा, नहीं तो प्रेम से भक्तिमय सेवा करेगा, वो भगवान को ज़्यादा प्रेरणा देता है, वैदिक मंत्रों से भी ज़्यादा, तपस्या से भी ज़्यादा, दान से भी ज़्यादा। इसलिए उद्धव गीता में 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं उद्धव जी को, नमाम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। बोलते हैं हे उद्धव, जितना मुझे भक्ति प्रेरणा करता है, देता है मेरे हृदय में, उतना प्रेरणा ये योग सांख्य स्वाध्याय इत्यादि मुझे उतना प्रेरणा नहीं देते। तो यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां उधर फल वाले फूल वाले जब ऐसे पुकारते हुए आते थे उनके घर के बाहर, खरीदते समय उनके साथ बातचीत होता था, कृष्ण के लीलाओं के बारे में कथा श्रवण की थी उन्होंने, वो लीला श्रवण करके करके धीरे धीरे उनके हृदय में कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम जग गया था। इसलिए सदा कृष्ण के नाम लेना, कृष्ण का स्मरण करना उनके लिए स्वाभाविक हो गया। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वैदिक ज्ञान भी नहीं था, फिर भी वो इस तरह उनके हृदय में भक्ति भक्ति थी, आकर्षण था, ऐसे ऐसे बताया है। तो इसके एकदम विरुद्ध यज्ञिक ब्राह्मण जो थे वो लोग अपने रीति रिवाज में फंस गए, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है वो भूल गए। इसके संबंध में यही बात जोर दिया है। कभी कभी हम लोग कभी कभी डिटेल में इतने फंस जाते हैं, उसके मूलभूत उद्देश्य हम लोग भूल जाते हैं। जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें हरि गुरु वैष्णव को खुश करना ही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, लेकिन कभी कभी हम लोग हरि गुरु वैष्णव के परायण बनने के बदले रीति रिवाजों के परायण बन जाते हैं। आपको एक दो उदाहरण दे दूंगा क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक बात है। एक बार गोविंदा गोविंदा नाम के चैतन्य महाप्रभु के सेवक था, वो एक दिन गया गंभीरा में। रोज दोपहर के समय महाप्रभु को के पांव को महाप्रभु को महाप्रभु के कंधे महाप्रभु के पांव इत्यादि वो दबाकर उनको मालिश करता था वो। तो एक दिन जैसे गंभीरा जिधर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ठहरे थे उधर गया, उधर महाप्रभु दरवाजे में लेटे थे, ऐसे उनके चेहरा दिख रहा था, वक्षस्थल दिख रहा था, लेकिन पांव अंदर था। लेकिन उसको पांव दबाना है अंदर जाकर, हाँ अभी अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं महाप्रभु को उठाऊंगा तो उनका नींद में भंग हो जाएगा ना नींद, तो क्या किया जाए। उन्होंने क्या किया, अपने अंग वस्त्र को लेकर उनके शरीर के ऊपर ढक दिया और पार किया। ऐसे वैष्णव को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो भी एक वैष्णव आचार है, वैष्णव के ऊपर पांव ऐसे डालकर उस साइड जाना नहीं चाहिए ऐसे। फिर भी किया उन्होंने, क्योंकि महाप्रभु आराम कर रहे थे, उनके आराम को भंग नहीं करना चाहता था। अंदर जाने के बाद पांव दबाया, एक घंटे आधा घंटा एक घंटा किया, तो दो घंटे हो गए। उसके बाद महाप्रभु जग गए, बोले कि ए गोविंदा तुम प्रसाद खाया कि नहीं। गोविंदा बोला, गोविंदा कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ वो चैतन्य चरितामृत में दिया है, वो नहीं बोला। महाप्रभु ने पूछा कि क्यों नहीं, मैं आपको आपके शरीर को पार करके कैसे बाहर जा पाऊंगा, ऐसे उसने पूछा। तो महाप्रभु ने पूछा, अरे मुझे पार करके अंदर आए, अभी पार करके बाहर जाने में क्या हरकत है। लेकिन उनका जवाब यह था, मैं पार करके अंदर आया आपकी सेवा देने के लिए, लेकिन अभी खाने के लिए अगर मैं पार करके बाहर जाऊंगा, मेरे खुद की इंद्रिय भोग के लिए मैं आपके शरीर को पार नहीं करूंगा, पर ऐसे क्रॉस नहीं करूंगा आपके शरीर को, खुद की पेट का भरण के लिए वो इंतजार कर सकता हूँ, आप उठने तक मैं वेट करूंगा, आप जाने के बाद उठने के बाद ही मैं जाऊँगा, लेकिन आपकी सेवा में भंग नहीं होना चाहिए, सेवा में कमी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैं मेरे अंग वस्त्र डालकर क्रॉस करके आया, ऐसे बोला। इसका मतलब क्या है, अंदर आते समय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रेकिंग अ लेसर रूल फॉर अ ग्रेटर रूल। जैसे अंदर आते समय दो विधि थे, एक विधि था किसी वैष्णव के शरीर को क्रॉस नहीं करना, वो एक विधि था। दूसरा विधि था महाप्रभु को उनके पांव दबाना। ये दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या था, हाँ अगर वो बोलेगा नहीं नहीं मैं विधि नहीं तोड़ूंगा, आज महाप्रभु लेट गए ऐसे इसलिए मैं जा रहा हूँ वापस, तो सेवा भंग हो जाएगा, महाप्रभु के पांव दबाने का सेवा भंग हो जाएगा अंदर। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो तो वैष्णव एटिकेट को तोड़कर अंदर चले गए क्रॉस करके, तो सेवा हो गया ठीक तरह से। बाहर आते समय दो शर्त थे, एक था शरीर को क्रॉस नहीं करना चाहिए और दूसरा था खुद भोजन पाना। उनमें से श्रेष्ठ कौन माना उन्होंने, हाँ वैष्णव टिकट को प्रधानता दिया, और अपने खाने का प्रोग्राम जो था वो सोचा कि ठीक है जब महाप्रभु उठेंगे तब खाऊंगा, ऐसे। तो इस तरह से उसका मतलब है, हम लोग भी अपने जीवन में कार्य करते समय सोच विचार कर करना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी यज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, अभी कृष्ण को जाकर प्रसाद परोसना ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो यज्ञ को पूरा करना महत्वपूर्ण है, कृष्ण को देना, क्योंकि यज्ञ पुरुष ही आए हैं ना, वो ही यज्ञ पुरुष हैं, उनको दया देकर इधर यज्ञ में, तो इसका मतलब रीति रिवाज में फंस गए वो लोग, उन्होंने सोचा कि हमको समय पर चालू करना है यज्ञ, समय पर पूरा करना है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसको भूल गए, वो समझा ना आपने, इसलिए वो इस तरह भगवान को कुछ नहीं कर पाए वो यज्ञ ब्राह्मण। और इस तरह और एक मैंने उदाहरण सुना कि एक बार श्रीपद रामानुजाचार्य ने एक बहुत धनी शिष्य के घर में जाने का प्रोग्राम था उनका, अपने चार पांच शिष्यों को भेजा, बोला कि वो धनी व्यक्ति जो है उसको मिलकर आओ, थोड़ा प्रोग्राम बना कर आओ, एडवांस पार्टी, मैं बाद में हम जाएंगे, मैं आपके साथ आऊँगा। तो ये लोग गए उसके घर में, जाकर दो तीन दिन बाद वापस लौट आए, तब इनके चेहरा छोटा हो गया था। वहाँ पर इन्होंने पूछा रामानुजाचार्य ने, आप लोग गए उधर, मिला उनसे? हमने मिला उनसे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बताइए। हो वो तो बहुत उत्साही है आपको स्वागत करने के लिए, आपकी आपका राह देख रहा है, वो आपके शिष्यों में सबसे धनी शिष्य है, लेकिन हम लोग गए थे, हमको ठहरने की व्यवस्था नहीं की, कुछ प्रसाद के लिए व्यवस्था कुछ नहीं की थी, उन्होंने ऐसे वो काम काज में पड़ गया, गुरु आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं करके तैयारी में लग गया वो, लेकिन हम लोगों को क्या कर दिया, भूल गया हमको, ठीक है हम लोग ऐसे ही कुछ एडजस्ट करके हम आ गए, ऐसे बोले। तो श्रीपद रामानुचार्य नाखुश हो गए, वो बोले कि मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा। उसी शहर में दूसरा एक वरदाचार्य और लक्ष्मी, एकदम गरीब वो पति पत्नी थे, उनके घर में जाकर पूछने के लिए बोले। तो ये लोग गए, तीन चार शिष्य गए, वो लोग जाते ही उनको ऐसे स्वागत किया मानो गुरु जी ही आ गए हैं, ऐसे उनको स्वागत किया, बैठने के लिए व्यवस्था किया, प्रसाद परोसा, सब होने के बाद उनको खुश करने के बाद पूछा कि अभी बताइए गुरु जी का प्रोग्राम क्या है, कब आने वाले हैं। इसका मतलब है गुरु जी के शिष्यों को खुश करने से कौन खुश हो गए, गुरु जी खुश हो गए। तो तब तो महाप्रभु तब रामानुचार्य उनके घर में गए थे, तो वो जो धनी था वो भी आया था, वो रोने लगा, वो मेरी ओर से कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। तब रामाचार्य ने उनको सिखाया, देखो तुम गुरु को बहुत बड़ा माना लेकिन शिष्यों को भूल गए, शिष्य भी गुरु के ही शक्तियां हैं, गुरु को ही मदद कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी ख्याल रखना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ आपको, जब कभी कभी हम लोग कुछ घर में कुछ कार्यक्रम के लिए जाते हैं, और जाते समय भक्त लोग कार्यक्रम करते हैं, खुद भी प्रसाद ले लेते हैं और निकलते हैं, लेकिन ड्राइवर को नहीं पूछा क्या आपने खाया कि नहीं, करेक्ट है ना। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी में बैठने के बाद 9 बज जाता है, हाँ, और टीचर बोलेगा ड्राइवर को, अरे निकलो अभी जल्दी हमको निकलना है, तो भाई मैंने कुछ खाया नहीं, आज सुबह सुबह खाया 10 बजे, शाम को कुछ नहीं खाया, अरे खाया नहीं, हम लोग अभी खा रहे थे, तुम खाए नहीं क्या, नहीं हम किसी ने बुलाया नहीं हमको, आप बोलेंगे तो हमका मैं कैसे अंदर घुस कर खा सकता हूँ, ऐसे बोलता है। इसका मतलब इसलिए जो लोग संवेदनशील बोलते हैं ना, सेंसिटिव लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, ड्राइवर को पहले बिठा देंगे, अरे उसको भी खाने दो ताकि हम जो ना साथ में जा सकते हैं, करेक्ट है ना। हम कभी कभी भूल जाते हैं, हम इस तरह से यज्ञ का उद्देश्य ही भूल गया ये यज्ञ ब्राह्मणों ने, समझा ना आपने, या तो यही बताया जा रहा है इधर। तो ये एक बात है, मैं ब्राह्मणों के बारे में बोलना चाहा, इसलिए ब्राह्मण लोग अपने आप को भी कोस रहे थे बाद में, अरे हम धिक्कार है हमारे कुल की, हमारे व्रत की इत्यादि का, वो बोले कि क्योंकि हम लोग मूलभूत उद्देश्य को भूल गए हम लोग। इस तरह कभी कभी हमारे भक्त लोग साधना कार्ड बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर मान लीजिए साधना कार्ड के कारण हर एक व्यक्ति का रोज माला रात को 11 बजे होता है पूरा, साधना कार्ड बनने से कुछ मतलब है क्या, मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग जो भी रीति रिवाज करते हैं उसके अंदर उसका मर्म क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो भूलना नहीं चाहिए, वो बताते हैं। दूसरा चीज है, भक्ति रसामृत सिंधु में ये तीन उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, जो लोग कृपा सिद्ध भक्त हैं, एक है यज्ञ पत्नियों का नाम है उधर, कृपा सिद्ध है, कृपा से मतलब उनको भगवान की कृपा से सदगति प्राप्त हुआ उनको, दूसरा है बलि महाराज, तीसरा है सुखदेव गोस्वामी, ऐसे बताते हैं, ये तीन लोगों का नाम लेते हैं वो। तो इनके ऊपर जो कृपा हुआ उसके बारे में दो शब्द बोलेंगे। तो भगवान ने उनको बोला, देखिए इनमें और गोपियों में क्या फर्क है, अभी गोपियां वैश्य परिवार की थी, ये ब्राह्मण परिवार के थे ये सब, तो इनका संस्कृति स्पेशल होता है, तो महाप्रभु ने सोचा कि ये स्त्रियां जो है इनके अंदर मेरे ऊपर श्रद्धा है, प्रेम है, लेकिन वो कोमल स्तर पर है, अभी हा? इसको मजबूत करने के लिए ये मेरे से दूर रहकर मेरे स्मरण में, मेरे भक्ति में, मेरे बारे में कथा का श्रवण करके इनके भक्ति को मजबूत करना चाहिए। इस तरह सोचकर भगवान ने बोला उनको कि कभी कभी हम निकट होने से प्रेम नहीं बढ़ता, लेकिन जब हृदय जुड़ा रहता है तब प्रेम बढ़ता है। हृदय में संबंध होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि आप लोग अगर मेरे ऊपर प्रेम भक्ति बढ़ाना चाहते हो तो मेरे साथ आने में आपको भक्ति नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप लोग मेरे बारे में श्रवण करो। ऐसे बोला उन्होंने। कल हमने पढ़ा ना एक श्लोक, हमने पढ़ा था कि श्रवण के द्वारा और प्रेम का प्रेम और गाढ़ प्रेम होता है श्रवण के द्वारा, ऐसे भगवान ने बताया। साथ साथ भगवान ने यह भी सोचा कि विप्रलंब सेवा करने में प्रेम और मजबूत होता है, इसलिए इनको ऐसे मौका दिया कि आप घर में रहकर मेरे भजन करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, ऐसे बड़े भक्ति में विप्रलंब में, ऐसे बोला उन्होंने। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, गोवर्धन लीला में प्रवेश कर रहे हैं अभी। ये गोवर्धन लीला में भी कोई असुर नहीं आया इधर, इंद्र ही था। इंद्र क्या असुर था? क्या असुर नहीं था, देवता था, देवताओं के भी राजा था वो। लेकिन कभी कभी देखा जाता है इस दुनिया में देवताओं के अंदर भी स्वामी भाव आ जाता है। देखिए हमारा अनुभव है, एक बार कहीं किसी कंपनी में हम गए थे और उनको पूछा कि तुम्हारा हचोड़ी है क्या, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तुम्हारे मालिक है क्या? तो वो उसके नीचे वाला बोल रहा है उसका क्या जरूरत है, अभी बोलिए आपको क्या चाहिए बोलिए। तो हमने बोला कुछ हस्ताक्षर लेना है उनसे, सैंक्शन चाहिए ना आपको? ऐसे पूछा। हम बोला हम खुद ही दे देंगे ना, ऐसे बोला उसने। अरे उसका अनुमति नहीं चाहिए, वो क्या करता है उसको कुछ मालूम नहीं है, हम सब चलाते हैं, हम करने के बाद बोल देते हैं उसको हमने क्या क्या किया है, वो चार सिर हिलाता है बस, वो काम करने वाले तो हम हैं, ऐसे बोला उसने। तो उसके बाद वो साइन कर दिया। बाद में उसके मालिक आए, उसको चिल्लाया अरे तुमने इसको सैंक्शन कैसे किया? बाद में फोन करके बुलाया प्रभु जी आ जाइए, ये बोल रहा है, मना कर रहा है अभी। क्योंकि मैं क्यों बोला, नीचे वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मेरे ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, समझे ना आपको। इस तरह के स्वभाव इस दुनिया में देखा जाता है। कभी कभी ऊपर जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वो भी सोचता है कि मैं मेरे अनुमति के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और वो उसके नीचे वाले व्यक्ति को आदर नहीं देता है। लेकिन आप देखेंगे प्रभु भगवान कृष्ण उनकी आदत आप देखेंगे, सुदामा जैसे ब्राह्मण को भी कैसे उन्होंने स्वागत किया अपने घर में, उनके पांव धोया, उनको प्रसाद परोसा, आरती उतारा है। भगवान अपने भक्तों को बहुत अच्छा रखते हैं, आप देख सकते हैं इसे। और देवताओं के भी जीवन में भगवान बीच में कभी पड़ते नहीं है, वो भी जो भी विधि विधान इस दुनिया में भगवान ने बाकी जीवन के लिए बनाए हैं वो ही सबको पालन करने के लिए बोलते हैं। और देवता लोग जब तक सही ढंग से अपने काम चलाते हैं भगवान बीच में नहीं पड़ते। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि देवताओं के अंदर अहंकार आ जाता है। वो उनका अहंकार क्या आता है, वो डिपार्टमेंट के काम करते 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 क्या होता है, पूरा उनको लगता है कि पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। जैसे इधर इतने बल्ब जल रहे हैं, आप स्विच ऑन करो ऑन हो जाता है, ऑफ करो ऑफ हो जाता है, हमको क्या लगता है हाँ कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो आप देखते हैं एक बार ऑन करते हो ये ऑफ ही रहता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वो लोग पावर कट कर दिया, उधर पावर कट कर दिया तो ऑन होगा क्या इधर, तब हमें अकल आएगा, बुद्धि आ जाएगा, अरे इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, कहीं और है। इस तरह का बुद्धि भी देवताओं को भी बाद में आता है कभी कभी है। ऐसे उपनिषदों में एक कैना उपनिषद है, एक कथा है उधर, एक बार असुरों को जीत कर देवता लोग विजय पाए। हर देवता अपने अपने लोग जाने के पहले अपने अपने पत्नियों को बोला कि देखो आज मैंने क्या कमाल कर दिया, क्या युद्ध किया मैंने, मेरे कारण हमारे सब देवताओं को मैंने विजय लाया, सब लोगों ने विजय प्राप्त किया। तो पत्नियां बहुत खुश होगी पति के बात सुनकर, हमारे पति की हीरो है, बहुत बड़े नायक है। तब भगवान कृष्ण ने देखा कि ईश्वर ने दे, परम ईश्वर ने देखा कि ये जो देवता लोग गर्व कर रहे हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कैसे वो जीत पाए ना? तब उन्होंने क्या किया, ये क्या करके देवताओं को बुलाया, उन्होंने बुलाया वायु को, बुलाया वायु तुम क्या कर सकते हो बताओ। वायु बोला भगवान आप तो जानते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ वेस्ट मानसून, ऐसे में हवा बहाऊंगा तो बड़े बड़े बादलों को भी मैं धक्का मुक्का देकर लेके जाता हूँ आगे, बहुत बड़े बड़े बादल जो 10 मील डायमीटर ऐसे बादल को भी। तो भगवान बोले अच्छा इतने बड़े बादल को भी तुम उठा सकते हो ना, उसका धक्का दे सकते हो ना। अभी भगवान ने एक छोटा तृण डाला उनके सामने, बोला कि इस तृण को उड़ा दो अभी करके। वो सोचे ये क्या बड़ी बात है, क्या हमारे साथ मजा कर रहे हैं क्या। लेकिन वो उसको उड़ाने के लिए ऐसे किया, लेकिन वो तृण थोड़ा भी हिल भी नहीं रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, अरे छोटा तृण को मैं उड़ा नहीं पा रहा हूँ। बहुत देर ट्राई किया, उसके बाद शर्म आ गया उसको, अपने सर को नीचे डालकर भाग गया उधर से। ऐसे भगवान ने एक एक करके बुलाया है। उन्होंने बोला अग्नि को बुलाया, अग्नि तुम क्या कर सकते हो। अग्नि बोला भगवान मैं तो पूरा जला कर राख बना देता हूँ। तो उन्होंने बोला तृण को लेकर तुम करके दिखाओ। वो अग्नि चारों दिशाओं में फैल गया लेकिन तृण को स्पर्श नहीं कर पाया वो, तृण जैसे कि वैसे ही था तृण। तो उसको भी शर्म आ गया है, बहुत शर्म के साथ वो भी भाग गया। ऐसे एक एक करके भगवान ने सब देवताओं को दिखा दिया उस दिन, आप लोग एक छोटे तृण को भी कुछ नहीं कर सकते आप। तब इंद्र पहले से निकल चुका था, अभी वो वापस लौटा रहा था, उसको सुनाई दिया कि सब देवता अभी भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है उधर, वापस लौट आया। तो तब देवी खड़ी थी पार्वती, पार्वती कुछ माता उधर क्या चल रहा है, क्यों इतना भीड़ भाड़ है, देवताओं को युद्ध तो हो ही गया ना, और कोई असुर आ गया क्या है। तो तब पार्वती बोली कोई नहीं आए, देखो भगवान दिखा रहे हैं सबको, वो बलहीन है बाकी सब देवता लोग, एक तृण को भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तुम उधर जाओगे तो तुम भी शर्म, तुमको भी शर्म हो जाएगा है, तुमको भी कुछ परीक्षा लेंगे। वो सुनते ही इधर से ही भाग गया वो इंद्र, उधर गया ही नहीं वो। उस देने से ये जो सब लोग बोलते हैं आपने सुना होगा, भगवान के आदेश के बिना एक तृण भी नहीं हिलता, ऐसे बोलते हैं इसके कारण। इसलिए भागवत में आप पढ़ेंगे मदभयात पाति वातो यम सूर्यस्तपति मदभयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मदभयात। बोलते हैं भगवान मेरे आदेशानुसार सूर्य का उदय होता है सुबह और सूर्य का अस्तमन होता है शाम को, मेरे आदेशानुसार बारिश होते हैं, मेरे आदेशानुसार आग जलता है, मेरे आदेशानुसार मृत्यु सही टाइम पर पहुंच जाता है काल सब लोगों के लिए, जिनको जो टाइम पर पहुंचना हो उस टाइम पहुंच जाता है, सबका हिसाब किताब है भगवान के पास ऐसे। और भगवान बोलते हैं कि इस दुनिया में मेरे आदेशानुसार हवा बहता है, ऐसे भागवत में बोलते हैं भगवान। सब टिक टाक से काम कर रहे हैं दुनिया में, सब देवता लोग भगवान को सलाम मारकर सेवा दे रहे हैं वो लोग, करेक्ट है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी परतंत्र है, परतंत्र नहीं, अभी कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र है, सब देवता भगवान एकमात्र स्वराट है, उनको कोई शासन नहीं चला सकता उनके ऊपर। भगवान किसी के अधीनता में नहीं है, वो स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है वो, लेकिन सब बाकी देवताएं भगवान के अधीनता में है। इसलिए हम बोलते हैं ईश्वर है परमा कृष्ण, ऐसे बोलते हैं। लेकिन कभी कभी अगर कुछ देवता के अंदर गर्व हो जाता हो तो उस गर्व को मिटाने का मार्ग भगवान जानते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले सुना ये ब्रह्म विमोहन लीला में, ब्रह्मा तो चार सर वाले बड़े देवता हैं, वो इंद्र से भी बड़े माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान को एक माया में डालने के लिए प्रयत्न किया, खुद ही फंस गए, देखा ना हमने ऐसे। तो भगवान ने ऐसे एक लीला रचाया, देखिए हर एक देवता के साथ भी अलग अलग तरीके से लीला रचाते हैं वो। ब्रह्मा के लिए क्या किया उन्होंने, ब्रह्मा ने क्या सोचा था, ये छोटा बालक गोपाल क्या करेगा, मैं जब लौट आऊंगा मेरे पास आकर दंडवत करेगा, याचना करेगा ये मेरे गोप बालों को, गाय पिछड़ों को वापस दे दो, आप नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, घर वापस अकेले लौटेंगे तो सबके माँ बाप मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, सब चिल्लाएंगे ना, आप कृपया दे दीजिए। तब ब्रह्मा ने सोचा ठीक है, मैं मुस्कुराते हुए गुफा खोल कर सबको छोड़ दूंगा, इस तरह मेरे माया की शक्ति को मैं प्रकट करूंगा। ऐसे किसने सोचा था, ब्रह्मा जी ने। लेकिन भगवान तो ब्रह्मा के पास गए ही नहीं है? इसके एकदम विरुद्ध देखा उन्होंने, ऐसे ही बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक साल गुजर गया है दुनिया में इधर, एक साल तक उसके पास ये सब है, तो मैंने जो सेट गोप और बच्चों को रखा था गुफा में, क्या उसको खोल दिया क्या? सबको उठाकर लेके गया लगता है। उधर जाकर देखा उन्होंने, उधर उधर भी एक सेट था, इधर भी एक सेट था। तो ब्रह्मा का क्या सोचना था, मैं जब उधर जाता हूँ इनको डाल देता है अंदर, इधर आता हूँ तो उधर से लेके आता, इतना जल्दी कैसे कर पाता है? ऐसे सोचकर उनका चारों चर चक्कर आने लगा, चारों चर गोल गोल घूम रहा था ऐसे ब्रह्मा का ऐसे। तो ब्रह्मा को भी सार चर वाले ब्रह्मा को भी, चतुर्मुख ब्रह्मा को भी चक्कर में डाल दिया भगवान ने ऐसे। तो इसलिए मुह्यंती यत्सुरेह, पहला श्लोक में बोलते हैं ना ऐसे, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिदर्रश्चार्तेष विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सूर्य का मतलब देवता लोग, देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण को समझने में, इसलिए हमें सस्ता नहीं लेना चाहिए कृष्ण को। अभी हो गया ब्रह्मा जी का वो लीला, अभी इंद्र का एक लीला होने वाला है, अभी इंद्र का भी ऐसे ही हो रहा है, अभी देखेंगे क्या हुआ इंद्र का। देखिए हर साल नंद बाबा और बाकी गोप इंद्र के लिए एक पूजा करते थे, क्यों? क्योंकि वैश्य है ना, वैश्य लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो फसल काटने के बाद वो लोग धान्य को विष्णु को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही लेते हैं वो लोग, सब फसल आता है घर आता है बाद में। इसी तरह खेत जोत कर बीज डालने के पहले एक ऐसे इंद्र का पूजा भी होता है, उसके बाद ही बारिश आता है ना, बारिश का मौसम है, बारिश आता है। ये लोगों का आदत था कि इंद्र की पूजा करो हर साल, अनेक सामग्रियों को एकत्रित करके। उस समय वृंदावन में एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय बिताकर सब घर में सब लोग सामग्रियों को इकट्ठा कर रहे थे, किसके लिए? इंद्र यज्ञ के लिए, इंद्र को यज्ञ करने के लिए। तब कृष्ण आकर, कृष्ण ने देखा कि अरे अभी एक यज्ञ देखकर आया हूं मैं, कौन थे उधर? यज्ञ ब्राह्मण है, अरे वो मूर्ख होकर वो रीति रिवाज में फंस गए वो लोग है, लेकिन उनकी पत्नियां महान भक्त बनी है, उनकी प्रशंसा करके भगवान अभी वापस लौटा है। इधर अभी ये लोग दूसरा इंद्र का यज्ञ चालू कर रहे हैं। अगर ये मेरे ही भक्त हैं, ब्रजवासी लोग शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, और ये लोग इस रीति रिवाज में फंस जाएंगे उस तरह से जिस तरह ब्राह्मण लोगों ने किया, इस तरह ये देवताओं की पूजा करके इनकी करने की क्या जरूरत है क्या शुद्ध भक्त को? शुद्ध भक्त तो भगवान के ऊपर निर्भर रहता हो, किसी देवताओं के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। वो एक चीज था भगवान के मन में। दूसरा विषय था भगवान के मन में, उन्होंने देखा कि साल के बाद साल के बाद साल के बाद इंद्र पूजा स्वीकार कर एक तरह का अहंकार आ गया इंद्र। देखिए ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, एक अमेरिका में कैसे मैंने बच्चे के बारे में सुना, वो बचपन से उसके माँ बाप उसको जो चाहे था दे देते, वो जो चॉकलेट चाहिए ले लो, जो खिलौना चाहिए ले लो, जो गाड़ी चाहिए ले लो, जिस स्कूल में पढ़ना है पढ़ो, जब खेलना है खेलो। माँ बाप का जो सोच ऐसा था कि बच्चे के ऊपर कुछ पाबंदी नहीं डालना चाहिए। ऐसे बड़ा होता गया वो, जब 15-16 साल का हुआ, स्कूल में कॉलेज में जाने के बाद एक सुंदर लड़की को देखा, जाकर बोला कि देखो इधर आओ, तुमसे विवाह करना है हमको, ऐसे बोला उसने। तो वो बोली नहीं नहीं मैंने दूसरा चुन लिया है, दूसरा लड़का है, उससे विवाह करना है, हमने माँ बाप से बोल दिया है सब, हम अभी कुछ समय के बाद हम सेटल हो जाएंगे। ये बोला कौन है वो बताओ। तो और एक दूसरा खूबसूरत लड़का था, उसको दिखाया उसने, ये गन लेकर शूटिंग कर दिया उसको। और स्त्री को बोला उसने, मेरे जीवन में आज तक किसी ने ना नहीं बोला, तुम पहली बार ना बोल रही हो, इसलिए उसको शूटिंग कर दिया। अभी उसको ही प्रेम करती थे ना तुम, अभी वो निकल गया ना, अभी मैं हूं तुम्हारे लिए, ऐसे बोला उसने। ये बोले अरे मूर्ख है, इतना बड़ा क्रूर व्यक्ति हो तुम दृष्टन सख, इतने बड़े क्रूर व्यक्ति, तो अभी तुमने जो किया इतना गर्हित काम किया, इतना निंदनीय काम किया तुमने, मैं तो कभी भी जीवन में तुम्हारे बारे में सोचूंगी भी नहीं है, निकल रही हूं बोला। तो उधर से निकलने लगी, उसको भी शूटिंग कर दिया, तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या, शूटिंग कर दिया उसको। तो अभी सब लोग भागने लगे इधर उधर, पुलिस को फी 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 पुलिस को बुलाया, पुलिस आ गए। तो ये बाइक लेकर भागने लगा, भगाने लगा जल्दी। देखा कि पुलिस बहुत बड़े नंबर के पुलिस लोग पीछे आ रहे हैं, तो सोचा कि अभी पुलिस पकड़ेंगे तो हमें जेल में डालेंगे, हमारा परिवार का सब बदनाम हो जाएगा सब। तो गन ले लिया, खुद को भी शूटिंग कर लिया। हाँ, ऐसे घटना घटती है, आप देख सकते हैं। अभी अभी जो उदाहरण बोला मैंने आपको, इसमें इस लड़का का गलती क्या था बताइए, क्या समस्या था उसकी, समस्या क्या था उसकी? हाँ नहीं, उसका क्या है, समस्या क्या है उसका, बार बार जो चाहिए था वो मांग कर ले लिया, कभी भी ना कोई बोलते नहीं थे। ही बिकेम अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड चाइल्ड का मतलब क्या है, अगर एक बच्चे को माता पिता कभी कभी कोको चॉकलेट देते हैं, वो खाता है, अभी दो चार खाता है और मांगता है और मांगता है, माँ बाप दे देकर उसको उसको स्पॉइल कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। अभी क्या करता है, बहुत खाकर दांत चार पांच गिर भी गया नीचे, अभी माँ बाप बोलते हैं बेटा अभी नहीं खाने का, वो दुकान में नीचे लेटकर हाथ पैर हिलाते हुए चिल्लाएगा, जब तक आप कोको चॉकलेट नहीं देंगे मैं दुकान छोड़कर घर नहीं आऊंगा। आपने देखा ऐसे करते हैं, कब बच्चे ऐसे हट करते हैं, उनको बार बार माँ बाप ने जो डिमांड किया उसको दिया। अभी भगवान ने यही सोचा है, ये जो देवता है इंद्र, हर साल इसको पूजा प्राप्त हुआ है, अभी पूजा का सामग्रियों को प्राप्त करके खा कर अभी थोड़ा मोटा हो गया, अभी है मोटा खुद नहीं हुआ लेकिन अहंकार इसका मोटा हो गया है ना, इतना अहंकार इसका मोटा हो गया, अभी इस अहंकार में एक सुई लेकर यह करना है, इसका अहंकार को मिटाना है। देखिए ये एक राजा का बहुत अनेक प्रश्न थे, आध्यात्मिक प्रश्न थे। तो वो राजा ने एक भिकमंगा था जो हमेशा बहुत खुशी में रहता था, एक भिखारी था लेकिन साधु भी था, वो हमेशा खुशी में था, उसको बुलाया था कोर्ट में उसने, तो उसको बुलाकर भगवान के संबंध में कुछ प्रश्न पूछा उसने, उसको पूछा ये बताओ भगवान किधर है। तो वो व्यक्ति ने राजा को तुरंत पूछा कि आप बताइए भगवान किधर नहीं है, आप बोलिए, ऐसे बोला उसने। राजा बोला बड़े बुद्धिमान है, हा? और राजा ने और एक प्रश्न पूछा, अरे तुम बताओ भगवान अपने धाम में बैठकर क्या काम करते हैं बताओ। तो ये वो साधु बाबा बोला, देखिए ये तो गहरा प्रश्न पूछा आपने, जवाब है मेरे पास लेकिन उसके लिए आपको सिंहासन से नीचे उतरना पड़ेगा आपको, और मैं बैठूंगा उधर कुछ समय के लिए, बोला। राजा बोले ठीक है तो बैठकर अभी जवाब तो दे दो मुझे, भगवान क्या करते हैं अपने धाम में बैठकर। तो ये बैठ गया राजा के सिंहासन, राजा नीचे बैठ गए, बैठकर ऐसे देख रहा था। राजा ने बोला अरे जवाब किधर है, वो बोला जवाब तो दे दिया ना मैंने, बोला क्या दे दिया, वो बोला कि जो अहंकारी लोग हैं उनको उतार देते हैं और जो नम्र है उनको बिठा देते हैं, यही जवाब है बोला उसने। जैसे हिरण्यकश्यपु कैसे था, उनको उतार दिया, किसको बिठा दिया, प्रहलाद को बिठा दिया। देखा अभी ये जो वाली जो था, क्या बात सुना क्या उसने सुग्रीव की, सही बात सुना क्या, सुना ही नहीं, सुग्रीव का गलत ही नहीं था हा? लेकिन गलत मान कर ऐसे गलत उसका गलत फेम ही हो गया उसका हा? लेकिन उसने मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया उसको, तो क्या हुआ, भगवान ने उसको उतार दिया, किसको बिठा दिया, सुग्रीव को बिठा दिया। आप देख सकते हैं रावण बड़े अहंकारी था, भगवान ने उसको उतार दिया, किसको बिठा दिया, तो आप देख सकते हैं इसे है। तो इस तरह अगर कोई अहंकारी बहुत उसका अहंकार चढ़ जाता तो भगवान उसको क्या कर देते हैं, जैसे गार्डन में ट्रिम करते हैं, मालूम है आपको ट्रिम करते हैं, नहीं तो अगर आप ट्रिम नहीं करेंगे गार्डन में कैंची लेकर, वो घास इधर उधर ऐसे बढ़ जाएगा, अच्छा दिखेगा क्या, वो अच्छा नहीं दिखेगा, उसको करना होता है। इस तरह अहंकार ज्यादा बढ़ने के बाद व्यक्ति अच्छा दिखता है क्या, बड़ा तंग करता है सबको, बहुत तकलीफ देता है इसे, इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको सही लेवल पर रखना चाहिए, समझाना चाहिए इंद्र को, इस तरह सोच कर ये लीला किया। लेकिन इस लीला के पीछे और भी मर्म है कि ब्रजवासियों के साथ निकट आदान प्रदान करने की मौका मिली भगवान को, वो गोवर्धन पर्वत के नीचे ऐसे, तो बहुत सुंदर लीला है, देखेंगे अभी। तो इधर देख रहे हैं एक समय जब कृष्ण ने देखा कि नंदा बाबा और बाकी गोप तैयारी चल रहा है, उनकी सामग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं किसके लिए, तो भगवान ने पूछा कि पिताश्री, ऐसे हाथ जोड़कर भगवान ने पूछा उनको बहुत आदर पूर्वक, क्योंकि वो लोग बोलेंगे बच्चा, छोटे बच्चे क्या जाने हैं, बच्चे निकल जाओ सब जाकर खेलो, ऐसे एक गोप बोल रहा था। तो भगवान समझ गए कि अगर इसको रोकना हो तो हमें प्रेम से पिताजी से ही पूछना चाहिए, सब लोग उनके ही अनुगामी बनकर कर रहे हैं सब कुछ। तो उन्होंने पिताजी से प्रेम से बोला कि देखिए ये क्या यज्ञ है, किसके लिए किया जा रहा है, ये लौकिक यज्ञ है नहीं तो शास्त्रीय यज्ञ है, आप थोड़ा बताइए हमको इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। ये सब पूछने के बाद नंद बाबा ने देखा मुस्कुराकर चुप रहे वो, तब कृष्ण ने बोला कि उन्होंने सोचा कि छोटे बच्चे क्या जानेंगे क्या समझेंगे ऐसे, तब कृष्ण ने बोला देखिए अगर कोई तटस्थ हो, नहीं तो कोई उदासीन हो, नहीं तो कोई दुश्मन हो, तो आप उनको घर की बात नहीं बोलेंगे। अभी तटस्थ का मतलब क्या, कोई व्यक्ति आपके पार्टी में है कुछ समय के लिए, उसके बाद दुश्मन की पार्टी में चला जाता है, जैसे नदी का तट कभी गीला कभी सूखा ऐसे चला जाता है, तो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनको तो हम रहस्य नहीं बताएंगे। और उदासीन का मतलब क्या है, अगर नदी का पानी आ रहा है तो बहुत बड़ा एक स्टेज बनाकर ऊपर बैठ जाता है, उत आसीन है बोलते हैं उसको, है उसको उदासीन का मतलब है पानी के ऊपर पांव नहीं रखता हो, वो उसका मतलब है उसको कुछ लेना देना नहीं है किसी से। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी आप रहस्य को खोल देंगे, कभी वो भी किसी का पार्टी में ज्वाइन कर सकता है भविष्य में, ऐसे बोला। और वैरी तो दुश्मन की बात पूछो ही मत, उनको हम कुछ रहस्य बोलेंगे नहीं उनको। लेकिन वो बोला मैं कौन हूँ पिताजी, मैं तो सुहृत हूँ परिवार के। सुहृत का मतलब क्या है, जैसे आपके ही भाई है, आपके ही बहन है, आपके माता पिता है, तो ये तो एक मत होकर घर में मिलजुल कर सब लोग रहते हैं, कुछ रहस्य छुपा कर नहीं रखते हैं घर के अंदर, है कि नहीं। अगर घर के अंदर कुछ झगड़ा भी हो पड़ोस को नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सुलझाएंगे उसको, है ना, इस रहस्य बात को भी घर के अंदर रखेंगे। तो मैं आप लोगों का सुहृत ही हूँ, इसलिए पिताजी मुझे जानने में क्या समस्या है बताइए। तो पिताजी ने बोला ठीक है बेटा बता देता हूँ। बोला उन्होंने कि हर साल हम लोग इस तरह करते हैं, क्योंकि हम लोग वैश्य हैं, हम गायों के लिए घास चाहिए, और हम हमारी जो खेती जो लगाते हैं उस खेती को बढ़ाने के लिए हमको बारिश की ज़रूरत है, और हम ये पूजा करते आए हैं बहुत सालों से, अब इंद्र भी वर्षा बरसाता हुआ आया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो इसी महीने में इस समय हम लोग करते हैं, ऐसे नंद बाबा बोले। और तब तो पूछते हैं कृष्ण, नंद महाराज उत्तर देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, एक्चुअली भगवान कृष्ण बहुत कुछ बोलेंगे इधर, अनेक विषय जिसकी हम पूरा हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात बताता हूँ, इनकी कृष्ण की इच्छा थी कि इस साल क्या करना चाहिए, इंद्र की पूजा को रोक दिया जाए, क्यों, वो इंद्र को उत्तेजित करना चाहते थे वो, उसके अंदर क्या पैदा करना, क्रोध पैदा करना चाहिए, क्योंकि अपने बारे में क्या सोच रहा है, वो छोटा सोच रहा है बड़ा सोच रहा है, बड़ा सोच रहा है। देखिए अगर वो नम्र हो इंद्र, अगर भगवान ने यज्ञ को बंद कर दिया तो क्या करेगा, अगर नम्र हो तो वो देखेगा कि हर साल पूजा हमारी हुई, लेकिन इस साल पूजा को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, हमको देने के बदले किसी और को दिया है, किसी और को पूजा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जब प्रचारक होते हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई बुलाते हैं, हर बार उनके घर में बुलाते हैं जन्माष्टमी के लिए, हर बार आप जाकर देते हैं, उस साल बुलावा नहीं आया उनसे, आपको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे बुलाए नहीं इस साल, आप उनको फोन करके पूछे प्रभु जी आप तो हमेशा अरेंज करते थे जन्माष्टमी कार्यक्रम के घर में, पिछले 4 साल से हम आ रहे हैं, अभी क्या हुआ, अगर आप पूछो वो बोलते हैं प्रभु जी इस साल हमने दूसरे भक्त को बुलाया है, आपके जो गुरु भाई हैं हम लोग उनको भी बहुत पसंद करते हैं, उनका कथा भी बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते समय इस व्यक्ति को कैसे लगेगा, हाँ क्या लगना चाहिए आज सही रूप में क्या लगना, ठीक है मैं तो 3-4 साल उसी ऑडियंस उनको देते आया हूँ, अब मेरे गुरु भाई को भी मौका मिले, अच्छा मौका है, अच्छा फेस्टिवल है, तो गुरु भाई को फोन करके बोलेगा कि बहुत अच्छा इस साल तुम जा रहे हो, बहुत बढ़िया करो, बहुत अच्छा कार्यक्रम, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं पहचानता हूँ। अगर हो सकता है तो हम भी उनके साथ जा सकते हैं, जाकर मृदंग बजा सकते हैं उनके लिए। वो तो अहंकारी नहीं ऐसे व्यक्ति को है कि नहीं, ऐसे कोई जा सकता है? नहीं तो अगर अहंकारी व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा वो, अरे हर साल आपने मुझे बुलावा करते थे, इस साल किसी और को लगे, अगले साल बुलाओ, हम नहीं आएंगे, हम हट करेंगे, हम बोलेंगे आप नाम भी छाप दो, फोटो भी लगा दो, हम नहीं आएंगे। इस तरह अगर कोई करता है तो उसका मतलब क्या है, अहंकार के स्तर पर वो काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग कभी कभी मान सम्मान पा पा कर गर्वित हो जाते हैं इस दुनिया में, ये दुनिया का समस्या है। ये हर एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है इसका, हमें इसको पार करना पड़ेगा। अब इंद्र को क्या करना था, अगर पूजा को डाइवर्ट कर दिया भगवान ने, ऊपर से नीचे उतर आने का, आकर क्या करने का, कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का, भगवान मैं इधर हूँ, इंद्र हूँ, आप तो नया पूजा निकाला है आपने गोवर्धन के लिए, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप ही प्रभु हैं, आप ही स्वामी, ऐसे बोलना चाहिए ना। तो तब कृष्ण सोचेंगे अरे इसके अंदर अहंकार ही नहीं है, करेक्ट है ना, लेकिन ऐसा किया क्या उन्होंने, एकदम विरुद्ध किया इसके, वही पढ़ेंगे इस लीला में हम। इंद्र का तो भगवान ने सोचा कि इंद्र पूजा को डाइवर्ट करके हम गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, लेकिन गोवर्धन की पूजा करने के लिए बोलेंगे क्या, बस तुरंत मानेंगे क्या, इसलिए भगवान ने क्या बोला उनको, देखिए इस दुनिया में कर्मवाद बोला भगवान ने, उसको बोलते हैं कर्म मीमांसा बोलते हैं उसको, मैं वो लंबी फिलॉसफी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको सरल रूप में समझा दूंगा इस विषय को। देखिए दो वाद होते हैं इस दुनिया में, कर्मवाद है दैववाद है। अभी पाश्चात्य देशों में लोग कर्मवाद को फॉलो करते हैं, क्या है, वर्क हार्ड एंड एंजॉय, वो फॉलो करते हैं, क्या है, कसरत करो पसीना छूटो पैसा कमाओ भोगो, ऐसे वो लोगों का बोलना है। और उनका बोलना क्या है, तकदीर के बारे में मत सोचो, तुम्हारे कर्म में क्या लिखा हो सोचो मत, वो बोलेंगे कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम जाइए कसरत करोगे तो सब तुमको मिल जाएगा, वो कर्मवाद बोलते हैं उसको। दैववाद क्या है, वो लोग बोलते हैं कि अरे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब होना है तभी होगा। जैसे भारत में अनेक गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओ, बोलो कि सर मैं एक फाइल सबमिट किया, अभी 3 महीना हो गया, अभी क्या आपने कुछ नहीं किया क्या, वो बोलेगा किधर है दिखाओ, वो क्या, ठीक है जब होना है तब हो जाएगा। हाँ पूछिए, ठीक आप ही बोले कब होगा, वो ईश्वर को पता है जब होना है, आपके तकदीर में जो लिखा है तब होगा। ये लोग दैववाद है, तो दैववाद भी सही नहीं है, कर्मवाद भी सही नहीं है। शास्त्र के अनुसार आप देखेंगे, जैसे एक व्यक्ति अगर कुआं के अंदर गिर गया हो, आप एक रस्सी डालते हो तो उसको रस्सी को पकड़ना है, हम रस्सी भी देते हैं और वो भी पकड़ता है, तब तो वो बाहर निकल सकता है कि नहीं। इसी तरह से अगर हम बीज बोते हैं, जब भगवान बारिश देते हैं तब क्या होता है, ये अंकुरित होता है, ये बढ़ता है, समझा ना आपने। इसी तरह दोनों का, अभी अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि में, भगवान उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और अर्जुन क्या कर रहा है, बाण चला रहा है, करेक्ट है ना, दोनों को मिलकर ना? इस तरह से जीव जो है परमात्मा की सहयोग लेकर वो विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन कर्मवाद लोग क्या बोलते हैं, कर्म करो भोगो। तो अब भगवान ने इस कर्मवाद को लेकर इन गोपों को कन्विंस किया, उन्होंने बोला कि देखो हम लोगों का समृद्धि कैसे फैलता है वैश्य परिवार में। अभी गाय जो होते हैं वो दूध देते हैं, तो गाय हमारे लिए पूजनीय है। और जो गोवर्धन जो है, देखिए इसमें इतना घास फूस है गोवर्धन में, गाय खाकर हमको दूध देते हैं, तो गोवर्धन भी पूजनीय है। और उन्होंने बोला कि हमारे जो भी खेती बाड़ी है हम लोग कसरत करते हैं, तो वो तो बारिश जो होना हर साल वो अपने आप हो ही जाएगा। वो महेंद्र किम करिष्यसि, बोला उन्होंने, इंद्र क्या कर सकता है, आप उसकी पूजा करो नहीं करो कुछ परवाह नहीं पड़ता है, वो तो बारिश बरसता है हर साल, भूमि में भी बरसता है, समुद्र में भी बरसता है, जिधर पानी की जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप लोग चिंता मत करो वो आ ही जाएगा। अभी इस बार हम उस पहाड़ की पूजा करेंगे गोवर्धन, जो हमको सब तरह के सुख सुविधा प्रदान करता है, गाय बछड़ों के लिए भी अच्छा है, और हम लोग भी जाकर खेलते हैं, कृष्णा और गोपाल खेलते हैं, उसमें झरने भी हैं, तो उधर हम नहाते हैं खेलते हैं, स्वच्छ पानी पीते हैं और घास फूस गाय भी खाते हैं उसको, और वो खेलने के लिए भी मैदान है ऊपर। तो उन्होंने बोला कि इस तरह हम, तो गोप ने बोला कि ठीक है आपकी वो इच्छा हो तो हम लोग इंद्र की पूजा अलग कर लेते हैं और गोवर्धन के लिए भी और एक सामग्री इकट्ठा करके बनाएंगे। भगवान बोले नहीं, ये जो सामग्री इकट्ठा किया आपने इंद्र के लिए उसको ही लेकर ये गोवर्धन की पूजा कीजिए, ये मेरा विनती है, ये करने से मैं बहुत तृप्त होऊंगा। तो कृष्ण को सब इतने प्रेम करते थे, उनकी बात मानते थे, वो ना मना नहीं कर पाए, वो मान लिया उन्होंने। कुछ कुछ गोप थे वो पूछ रहे थे, अरे पहाड़ को पूजने से कुछ लाभ होगा क्या, ये तो बालक छोटा बालक बोल रहा है, हमारे लोग मान रहे हैं कर रहे हैं। तो भगवान समझ गए ओहो ऐसे भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो क्या क्या उन्होंने गोवर्धन, तब भगवान ने बोला कि ये सब सामग्रियों को लेकर सब तरह के व्यंजन बनाकर आओ, इधर दिया होगा इधर।
फिर ग्वालों ने वह सब किया जो मधुसूदन ने सुझाया था। गोपियों के गीत ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ गूंजे। कृष्ण ने तब एक अभूतपूर्व घोषणा की, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ। उन्होंने प्रचुर मात्रा में भोग ग्रहण किया।
तब उन्होंने अपने आप को प्रकट किया किसके रूप में, गोवर्धन के रूप में। अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे, इसको दिखा देना। तो अपने आप को गोवर्धन, अभी आप देखेंगे ये सुंदर वृंदावन, देखिए ऊपर से एरियल व्यू एरोप्लेन से देखेंगे तो ऐसे देखेगा, है सुंदर वृंदावन की माहौल। तो यज्ञ के लिए तैयारी है इधर, देखा आपने सब बैठे हैं वैश्य लोग यज्ञ। तो ये तो इस साल का नहीं था, पूर्व सालों में ऐसे यज्ञ करते थे वज्रवासी लोग, सब तैयारी करके, कितना तैयारी किया है देखे। और यज्ञ होने के बाद क्या होता था, देखते थे बादल आ जाते थे, और इंद्र के असिस्टेंट लोग सब आए हैं, बारिश बरसते थे, इस तरह है। इंद्र देखता था बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग पूजा, और इस तरह है। तो बारिश होने के बाद सब लोग खुश हो जाते थे, अभी आप देखेंगे, हाँ देखिए पानी बरस रहा है, इस तरह साल के बाद साल होता रहा ऐसे। तो सब वैश्य लोग खुश हो जाते थे, अभी खेती में पानी भर जाएगा, बहुत अच्छा है, इस साल फसल अच्छा होगा, सब लोग मना रहे हैं, इंद्र की घोषणा कर रहे हैं, इंद्र जी की जय हो, ऐसे। अभी देख रहे हैं समृद्धि देख रहे हैं वृंदावन में, है ना। मेंढक है, सब कुश है, मेंढक कुश है, पंची कुश है, हिरण कुश है, मोर नाच रहे हैं बादल देखकर। सब वृंदावन में रंग बिरंगे फूल उग जाते हैं, दाने उग जाते हैं, सब कुश, इंद्र भी कुश, ब्रजवासी भी कुश। तब अभी इस बार कृष्ण क्या किया मैंने बताया आपको, बोले सब लोगों को बुलाया कि हम क्या करेंगे इस साल, गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब लोगों को बुलाया, सब सामग्री लेके आओ, सब हम गोवर्धन पर्वत को चढ़ाएंगे सब कुछ। बातचीत वगैरह होता है, ये गोवर्धन पर्वत है, यही बोला। देखिए अभी गोवर्धन पर्वत को भगवान ने क्या किया, अपने आप गोवर्धन का रूप धारण किया, सब ब्रजवासी खुश हो गए। क्यों भगवान ने ऐसे किया, वो दिखाना चाहते थे कि मैं गोवर्धन के रूप में आपने जो भी भोग दिया वो पूरा खाऊंगा। क्योंकि भगवान ने क्या क्या बनाना है बड़ा लिस्ट दिया था, आप रसमलाई बनाओ, संदेश बनाओ, गुलाब जाम बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, इस तरह पायसम बनाओ विविध तरीके के, उसके साथ विविध तरह के चावल, विविध तरह के चपातियाँ, विविध तरह के आइटम्स, ऐसे सैकड़ों आइटम बनाए थे ब्रजवासी लोग। जो पहले सामग्री में इकट्ठा किया था इंद्र की पूजा के लिए उसको इस्तेमाल करके भोग बनाकर लेके आए। तो भगवान ने सबको दिखाना चाहे चाहे कि मैंने बोला आपको गोवर्धन की पूजा करने के लिए किया आपने, तो गोवर्धन के रूप में भगवान ने क्या किया, सब कुछ खा लिया, उठा लिया, हाँ उठाकर खा लिया। सब लोग देख रहे थे, सब लोग बहुत आनंद आया कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं इसे। उसके बाद बोल रहे थे अणी और, बोल रहे थे अणी और, अणी और आओ लेके आओ। हाँ, और आस पास के गाँव से सब लोग बना बना कर भोग लेके आ रहे थे और खा रहे थे। इस तरह खाने के बाद भगवान ने उनको आदेश दिया था कि आप सब लोग गाय बछड़ों को सामने रखते हुए सब विजवासी ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करेंगे, आप लोग गोवर्धन की प्रदक्षिणा करो ऐसे। प्रदक्षिणा करने के बाद वापस लौट आकर गोवर्धन की पूजा होने के बाद गो पूजा भी करो, गाय की पूजा करो। और उन्होंने बोला कि कुत्ता बिल्ली को भी प्रसाद खिलाओ, और चंडालों को भी जो निम्न जाति के जन्म है उनको भी खिलाओ। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि समाज में सब लोगों को बच्चों जैसे ख्याल रखना चाहिए, जैसे गायों को पूजा करनी चाहिए लेकिन कुत्ते बिल्लियों को नकारना नहीं चाहिए, उनके लिए भी खाने के लिए देना चाहिए। लेकिन आधुनिक दुनिया में लोग उल्टा करते हैं, कुत्ते बिल्लियों को मनाते हैं और गाय को कत्लखाने में लेके जाते हैं। भगवान ने बोला गाय की पूजा करो, तो ऐसी संस्कृति जो है उसको सिखाया उन्होंने। सब गोपों ने किया, गोपियां ने किया, सब वही बताया गया है उधर कि गोपियां गा रही थी अच्छे अच्छे गाना, कृष्ण की गुणगान, और अच्छे अच्छे बैंड बज रहे थे, वैदिक ब्राह्मण लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, सब लोग ने प्रदक्षिणा किया, सब लोग लौट आए ऐसे, सबको प्रसाद वितरण किया, सब खुश हो गए। इस तरह वृंदावन देखिए सब लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं गोवर्धन की। अभी इंद्र के लोग आकर देख रहे हैं, अरे क्या हो गया, पूजा नहीं हुआ क्या इस साल, और ये लोग क्या सब सामग्री लेकर चढ़ा रहे हैं गोवर्धन को। ऐसे तो एक व्यक्ति आगे जाकर बता दिया इंद्र को क्या चल रहा है इंद्र के महल में। अभी इंद्र बैठा है उधर, उसको सुनाई दिया, बहुत नाराज हो गया वो। तो वो भेज रहा है संवर्तक बादलों को, तो संवर्तक बादल ने पूछा उनको, राजन आप बोल रहे हो कि मुझे जाकर वृंदावन के ऊपर जोरदार मूसलाधार वर्षा करना है, लेकिन ये सब लोग तो भगवान के प्रेमी हैं, प्रेमी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, क्या मुझे करना है क्या? तो वो बोला देखो तुमको डर है तो तुम सामने जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा, मैं भी साथ दूंगा तुमको। लेकिन समर्थक बोला कि मुझे तो इस्तेमाल किया जाता है प्रलय काल में, लेकिन आप अभी बोल रहे हैं, ठीक है अगर आप बोलेंगे तो मैं करूंगा। वो बोला हाँ अभी आगे जाओ, तो उसको भेजता है। तो आगे जाते हैं समर्थक का बादल, देखिए जोरदार वर्षा ऐसे होता है कि एक एक बूंद एक एक हाथी जैसे इतना बड़ा होता है। सब लोग देख रहे हैं, अरे इतना काला काला हो गया आसमान, बिजली चमक रहा है, जोरदार बारिश, अभी बच्चे भाग रहे हैं माता पिता के पास। इसे बादल है देखा ना आपने, इतना जोरदार बारिश, देखिए साहब अभी पानी में डूब रहे हैं, देखा ना आपने, नदी आ गया। पेड़ देखो, पेड़ को भी उखाड़ दिया है, देखा आपने ना, इतना तेजी से बारिश हो रहा है, देखा हो ना। हाँ गाय बछड़े रो रहे हैं, भाग रहे हैं, पता नहीं किधर, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। सब कृष्ण के पास भागते ही आ रहे हैं। तो कृष्ण बलराम को बुला रहे हैं, अभी बारिश जोरदार हो रहा है। तो अभी कृष्ण गोवर्धन के सामने आकर अभी उठाने वाले हैं गोवर्धन को। यशोदा आश्चर्य कर रही है ना, सबको बुला रहे हैं अंदर। अभी इंद्र खुद आएगा, अभी अभी इंद्र के आदमी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद इंद्र खुद ही आएगा। इंद्र देखिए अभी लेटा है उधर स्वर्ग में, आकर बोलता है कि क्या हुआ, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, कुछ चिंता नहीं है उनको, ऐसे बोल रहा है व्यक्ति। तो इंद्र सुनकर मैं खुद ही आ रहा हूं अभी, है खुद ही जाता है। देखिए क्या है ये हाथी, ऐरावत को लेकर जा रहा है अभी। अभी देख रहा है कृष्ण क्या कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा वज्रपात कर रहा है, हा? पहाड़ के ऊपर। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आप पढ़ेंगे भागवत में इंद्र ने क्या क्या नहीं किया पहाड़ के ऊपर, लेकिन पहाड़ तो एक्सटेसी में था, है परम आनंद में था, क्योंकि भगवान के स्पर्श हो रहा था ना, उसमें कुछ चिंता नहीं था। तरह तरह के आयुधों से उस गोवर्धन को गिराने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण बजा रहे हैं मुरली, मुरली बजाकर सबको खुश कर रहे हैं अपने भक्तों को। तक गया अभी, खुद ही गिर गया, देखिए ये भी गिर गया, ये जो ऐरावत भी गिर गया, खुद भी गिर गया वो कीचड़ में। सब गोविंद की जय जय गा रहे हैं सब। ठीक है, आज के बाद वो माफी मांगने के लिए आएगा वो। तो सब लोग कृष्ण को मना रहे हैं, देखा ना आपने। ठीक है, नाउ यू गो बैक टू दैट। आपने पूरा लीला देख लिया अभी, हाँ। तो हमारे एक भक्त ने स्वप्न रूप में बनाया है ये बहुत सुंदर तरीके से। तो मैंने इस तब तक बताया आपको, जब तक गोवर्धन पूजा करके प्रदक्षिणा करने के लिए, करेक्ट ना, उस समय तक पढ़ा। आगे बढ़े,
जरा देखें कि यह पर्वत किस तरह पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है और इसने हम पर कृपा की है। हम अपनी और अपनी गायों की सुरक्षा के लिए उन्हें नमस्कार करें। ब्रिजवासी भगवान कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज लौट आए। इंद्र संवर्तक बादलों को भेजते हैं।
यही लीला में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ये समझना है कि इंद्र की भावना क्या है, ब्रजवासियों की भावना क्या है, और भगवान की मन में क्या सोच है, ये समझना ही लीला का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब इंद्र का क्रोध देखिए, पढ़िए।
ग्वाले अभिमानी हो गए हैं और उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की शरण ग्रहण की है। भगवान कृष्ण निरामूर्ख अभिमानी और बातूनी बालक है, उनका अभिमान दूर करो और उनके पशुओं का विनाश कर दो।
हाँ, इंद्र एक श्लोक बोलता है उधर, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्युम उपाशित्य गोपामे चक्ररप्रियम, ऐसे बोलता है। क्या मीनिंग इसका, वाचालम का मतलब है ये जो छोटा लड़का है नीला रंग वाला है, ये बड़ा बड़ा बात करता है, पंडितमानिनम, अपने आप को सोच रहा है कि बड़ा पंडित है, बालिशम अरे बच्चे जैसे बात करता हो, उसको दुनिया का हाल क्या मालूम उसको, हर साल बारिश देने वाला कौन है? मैं देता हूं हर साल। अब ये विदेशियों को बोल रहा है कि मेरी जरूरत नहीं है, और हम पूरा कंट्रोल करते हैं, सब देखते हैं, हमको नकार दिया। वाचालम बालिशम स्तब्धम, स्तब्धम मतलब जिद्दी, जिद्दी करने वाला, हट करने वाला। अज्ञम का मतलब है जो अज्ञानी, किसको बोल रहा है अज्ञानी? कृष्ण को बोल रहा है। पंडित मानिनम ऐसे बोल रहा है। हाँ, पंडित मानिनम मतलब क्या? अपने आप को बड़े पढ़े लिखे मानना ऐसे। और बोलता है कि कृष्ण मर्त्युम उपाश्रित बोलता है, उसका मतलब है ये कृष्ण को एक साधारण मनुष्य माना उसने। मर्त्यम बोलता है, मर्त्यम का मतलब है जो इस दुनिया में इंसान जन्म लेता है मरता है ना, उनमें से एक गिनता है कृष्ण को भी ऐसे। उपाश्रित्य कृष्णम मर्त्युम उपाश्रित्य गोपामे चक्रुरप्रियम, बोलता है कि ये सब गोप ने मुझे नाखुश किया है, मुझे मेरे मुझे उत्तेजित किया है। ठीक है, ये तो छोटा बच्चा कुछ बड़बड़ करता है, लेकिन ये लोगों ने उसके बात क्यों माना? ये लोगों को हर साल में बारिश देता था, ये लोग मेरी पूजा करते थे, अभी वो सोच रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं करेंगे। आई कैन पुट दैट, ये मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं इस साल, लेकिन इनका क्या बुरा हाल होगा, मैं दिखा दूंगा इनको, ऐसे ऐसे वो सोच रहे थे ऐसे। हाँ, तो इस तरह के इंद्र का एटीट्यूड कितना खराब अहंकार का एटीट्यूड है वो हमें पता चलता है। इधर से उनके देखिए, इधर एक महत्वपूर्ण बात के बारे में थोड़ा हमें समझना है। इस दुनिया में 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, लेकिन सब देवता जो हैं भगवान ने ही उनको अधिकारी बनाया है, भगवान ने ही उनको पदवी दिया है। कोई संभालता है पानी का डिपार्टमेंट, कोई संभालता है आग का, कोई संभालता है शिक्षा का जैसे सरस्वती है, कोई संभालता है स्वास्थ्य का। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग सेवा दिया गया है इस दुनिया में, भगवान ने ही दिया है उनको। जैसे भारत में 29 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कितने हैं? एक ही है। इस तरह 33 कोटि देवता हैं, लेकिन परम पुरुष कितने हैं? भगवान एक ही है, कृष्ण ही है सब। इसलिए एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, ऐसे बताया भगवान एक है और देवताएं अनेक हैं। लेकिन कभी कभी देवताओं के अंदर ऐसे एक इच्छा हो जाता है कि मैं केंद्र बिंदु बन जाऊं। मेरे पास खास करके कब ऐसे होता है, अगर उनको एक सेवा सौंपा जाता है, दिया जाता है, वो सेवा करते करते सालों साल पूजा आराधना इत्यादि प्राप्त करके एक तरह का अहंकार चढ़ जाता है, अपने आप को केंद्र बिंदु बना लेते हैं। देखिए ये कब होता है, जब हम अपने कनिष्ठों से हम ज्यादा संग करते हैं, लेकिन हमारे समभक्तों से, हमारे वरिष्ठ जो गुरु होते हैं, गुरु के गुरु भाई होते हैं, उनके साथ अगर हम संग नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे दुनिया क्या है, सिर्फ हमारे कनिष्ठों के साथ ही है। अब इंद्र थे, इंद्र के नीचे कौन थे? व्रजवासी लोग थे, उनके लिए बारिश देते थे। ये भूल गए कि मेरा संबंध है कृष्ण के साथ, वो कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। मैं देखिए देवताओं के बारे में एक श्लोक है भागवत में, उनको कहा गया है वो सचिव हैं, कर्म सचिव हैं देवता लोग। सचिव जानते हैं आप, सचिव का मतलब है सेक्रेटरी ना। आपके कर्म का कर्मिक अकाउंट में जो लिखा है ना, उतना ही देवता लोग दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं, उतना ही दे पाएंगे वो। ऐसा नहीं कि वो कुछ खुद ही कुछ कर सकते हैं, कृष्ण से ही भेंटों को लेकर आपको प्रदान करते हैं। कृष्ण खुद ही बोलते हैं मयैव विहितान हितान, भगवद गीता में आप पढ़ेंगे। पहले ये बात समझना है हम लोगों को, खास इंपॉर्टेंट चीज, भगवान बोलते हैं कि अंतवत्त फलम तेषां तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान बोलते हैं अंतवत्त फलम तेषां, जो लोग देवताओं के पास जाते हैं उनको ऐसे फल मिलता है जो क्षणभंगुर है। जैसे शिवजी के पास गया था कौन? भस्मासुर, खुद ही मर मिटा ना वो। रावण भी गया था, उसके भी सोना के लंका के साथ मर मिटा वो। ऐसे आप देखेंगे हिरण्यकश्यप गया था ब्रह्मा के पास, वो भी भगवान नरसिंहदेव के हाथ में मर मिटा वो भी। तो अनेक लोग आप देखेंगे देवताओं के पास जाने वाले कुछ वासनाओं को लेकर जाते हैं, वो कठोर तपस्या करके कुछ ऐसे कुछ शक्तियां हासिल करते हैं जिन शक्तियों से दुनिया के बाकी जीवों को भगवान के बच्चों को वो सताते हैं, आप देखेंगे हमेशा देवता के पास जाकर। इसलिए देवता के पास जाकर मांगना भौतिक इच्छाएं और भगवान के पास जाकर मांगना दोनों एक समान नहीं है। अगर कोई देवता के पास कुछ मांगेगा भौतिक पदार्थ किसके समान है, जैसे कभी कभी हमारे स्कूल के बाहर मिठाई बेचते थे, एक पिंक कलर का मिठाई कुला कुला पड़ा रहता था, उसमें मक्खी आकर बैठते थे, अनेक बच्चे जाकर खाते थे, मैं भी खाता था, ऐसे 20 पैसा 40 पैसा दो मिठाई मिल जाता है। उसको खाने के बाद एक बार बुखार हो गया तो माँ समझ गई कि देखो ये मिठाई कभी खाने का नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो वो बोलते थे अगर 1 रुपया भी हो मिठाई के लिए लेकिन दुकान से खरीदो, ये बॉटल के अंदर जो रखा है उसको खरीद लो बेटा। हाँ लेकिन हमको पिंक मिठाई अच्छा लगती थी, वो है उसमें अलग अलग स्वाद आता था उधर। लेकिन हमने देखा कि दुकानदार के पास जाकर दो, वो मक्की के साथ ही बेच रहा है, वो क्या चिंता करेगा आपके तबीयत के बारे में, कभी चिंता करेगा क्या? वो देवता लोग ऐसे ही है, देवता लोगों के पास आप जाकर मांगो, पूजा हो गया ना वो सिर्फ आपके अकाउंट देखेंगे, हमारे अकाउंट में भर्ती कर दिया गया इतना पूजा हो गया क्या, पूजा होने के बाद सैंक्शन कर देंगे उसको, लेकर ये क्या करने वाला है वो परवाह नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके बच्चा आता है माँ के पास बोलता है मम्मा आप सब्जी कट रहे हो ना, चाकू मेरे पास दे दो, आप निकल जाओ मैं काटता हूँ, क्या देगी क्या वो? नहीं देगी, उसको मालूम है कि अपने खुद की उंगली को कट लेगा, करेक्ट है ना। लेकिन देवता ऐसा नहीं है, कोई बोलता है मुझे चाकू चाहिए, अगर उसने पूजा कर दिया तो चाकू दे देंगे उसके हाथ में, उसको लेकर खुद को नुकसान होता है, इसे दूसरों को भी नुकसान। इसलिए देवता के पास अनेक लोग जाते हैं, आजकल भी हम देखते हैं, इसलिए वो लोगों के पास कभी समृद्धि आने के बाद भी वो अहंकारी पुरुष होते हैं, क्रोधी पुरुष होते हैं, गलत उपयोग करते हैं चीज़ों का, देवताओं को देवताओं से भौतिक चीज़ें प्राप्त करके। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं अंतवत् फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम, देवताओं के उपासकों को बोलते हैं अल्पमेधस करके। इसका मतलब नहीं है कि वैष्णव लोग देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं है। भागवत में एक श्लोक है मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतीन अतः नारायण कला शांतान भजंती ही अनसूयवः। मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग, मतलब इस प्रकार है कि अनेक देवता इस दुनिया में, दो तरह के देवता लोग हैं, एक खूबसूरत दिखने वाले जैसे गणेश है, ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि, दूसरा है बहुत कोप वाले भी देखते हैं देवता लोग जैसे भद्रकाली, ऐसे देखा आपने कुछ जीवा बाहर पड़ा है ना उसका, ऐसे भद्रकाली, दुर्गा माता, कभी काल भैरव, कभी आप देखते हैं ऐसे चंडी चामुंडी है, इन तरह का रूप है। तो ये लोग दोनों तरीके के देवताओं के रूपों को पूजा नहीं करते हैं वैष्णव लोग, ऐसे बताते हैं। क्यों? क्योंकि इन रूपों में इसलिए बताया गया है मुमुक्षु वो घोर रूपान बताया गया है, तो घोर रूप में जो रहते हैं इनको तमोगुणी रजोगुणी लोग पूजा करते हैं इनकी। जो लोग चिकन खाते हैं मटन खाते हैं वो लोग दुर्गा को अर्पण करके खाते हैं ऐसे, लेकिन जो लोग सत्वगुण पर आ गए वो तीन ही विग्रहों का पूजा करते हैं, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, और उनकी पूजा एकदम शुद्ध तरीके से होता है। वो तुलसी देते हैं, शाकाहारी भोजन भोग चढ़ाते हैं, दूध देते हैं भगवान को, इस तरह की चीज़ें अर्पण करते हैं। तो लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया कि लेकिन भद्रकाली को और काल भैरव इत्यादि रूपों को वो कोसते नहीं, उनकी निंदा नहीं करते कभी। क्यों? वो जानते हैं कि भगवान के ये भी भक्त हैं और अलग अलग लोगों के गुणों के अनुसार भगवान ने विधि विधान दिया है, अगर उन लोगों को करना हो तो करने के लिए छोड़ दो, लेकिन खुद उनकी पूजा नहीं करेंगे लेकिन निंदा भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको आदर देंगे, लेकिन उनकी पूजा करके उनसे भौतिक पदार्थ मांगेंगे नहीं, ये बताया। तो ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, अगर कोई कृष्ण के पास भौतिक पदार्थ मांगता है क्या कृष्ण देते हैं? क्या देते हैं? नहीं देते हैं मांगने से? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भौतिक पदार्थ देने से हम कृष्ण को भूल जाएंगे ऐसे, इसलिए ना कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। तो भागवत में इसका एक श्लोक आता है प्रश्न भी पूछा गया, क्या कृष्ण भौतिक पदार्थ को देते हैं क्या? जवाब क्या है? जवाब है हाँ देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं वो भी बताया गया है। सत्यम दिशत्यर्तितमर्तितो नृणाम नैवार्तदो यत् पुनरर्तितायतः स्वयं विदत्ते बजताम अनिच्छताम इच्छापि दानम निजपाद पल्लवम। ऐसे एक श्लोक है, देखिए सत्यम दिशति, जरूर भगवान आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अर्तितम अर्तितो नृणाम, जो व्यक्ति कुछ अपेक्षा करते हुए गया कृष्ण के पास, वो सामान मिलने के बाद दूसरी बार कृष्ण से कुछ भौतिक पदार्थ कभी मांगेगा ही नहीं, ऐसे बताते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक चाहिए था, मिला कि नहीं उनको? लेकिन मिलने के बाद क्या उनको अच्छा लगा, उनको चाहिए था क्या? नहीं। क्या बोला उन्होंने? इसलिए तीसरा नियम बताया गया है, स्वयं विदत्ते बजताम अनिच्छताम। बोलते हैं वो मांगे बिना उन भक्तों को अपने श्री चरण की शहद मधु को भी भगवान दे देते हैं। इसके कारण वो मधु पीने के बाद लोगों को लगता है कि अरे इतना मधुर मधु पिया हमने, इसके समक्ष वो भौतिक पदार्थ फीका पड़ गया, कुछ मतलब नहीं। ऐसे हो गया ध्रुव महाराज का, उनके चित्त शुद्ध हो गया, भौतिक पदार्थों की ओर आकर्षण घट गई, कृष्ण के श्री चरणों में प्राप्त होने वाली मधु बहुत परमानंद को प्रदान किया। वो बोलते हैं जैसे नेश्ये भवत गुणकता अमृत पान मत्त, मैं ऐसे मत्त हो गया आपके श्री चरण की मधु पाकर, अभी कुछ नहीं चाहिए। काचम चिन्मन अभी दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम नहीं आचे, अभी कुछ वर नहीं चाहिए मुझे। भौतिक पदार्थ सब कांच के टुकड़ों के बराबर है, बोला उन्होंने, कांच के टुकड़ों से लाभ नहीं है, इसके विरुद्ध ऐसा करेंगे तो हाथ कट जाएगा आपको, इसके विरुद्ध आपके श्री चरण की मधु मुझे मिला है, ऐसे बोलते हैं। एक कहानी सुना हमने, एक डाकू भगत नाम का एक व्यक्ति भाग रहा था पुलिस से, पुलिस उसके पीछे कर रहे थे सड़क में, भागते भागते देखा कि अभी पकड़ा जाऊंगा, लोग मारेंगे पिटाई करेंगे जेल में डाल देंगे, क्या किया जाए। देखा कि एक कृष्ण मंदिर था, तो तुरंत तो घुस गया अंदर, तो पुलिस लोग सीधा गए सड़क में, पुलिस से बच गया वो। लेकिन वो मंदिर के अंदर भागवतम क्लास चल रहा था, तो देखा इधर उधर देखा, कोई मुझे पहचान नहीं पहचाने, तो एक भक्त को बोला तिलक भी डाल दो हमको, एक तिलक भी डाल दिया, जाकर बैठ गया करके ऐसे। तो वक्ता बोल रहे थे कुछ भागवत से, ये भी सुनने लगा क्या बोल रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि यशोदा कृष्ण को अच्छा सजाती है, सोना से चांदी से विविध आभूषणों से, कौस्तुभ पहनते हैं इत्यादि सुना उसने, मुकुट पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं। सुना कि अरे इतना बढ़िया वर्णन चल रहा है, किसी व्यक्ति के पास सोने का मुकुट है, रत्नों से मंडित है और चांदी है इत्यादि, तो उन्होंने सोचा कि तो पता करना चाहिए कौन है। तो अच्छे तरीके से ध्यान से सुना प्रवचन उन्होंने, प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तर हुआ, तो वो हाथ खड़ा किया उसने, मेरा प्रश्न है चोर है। तो उनका प्रश्न क्या था, वो व्यक्ति का नाम कृपया बता दीजिए, नाम नोट कर लिया, कृष्ण है, उसके गांव बता दीजिए, वृंदावन है, किधर रहता है, यमुना के तट में रहता है, कदम कानन के निकट रहता है, उसका रंग क्या है, उसका श्याम वर्ण है, और उसका थोड़ा आइडेंटिटी दिखा दीजिए, तो उसका मोर पंख पहनता है, उसका धोती पीतांबर रंग का है, इस तरह अपने मित्रों के साथ खेलता है, उसके लिए गाय बहुत अति प्रिय है, गाय बछड़े, सब सुन लिया वो। अरे इतना डिटेल मिल गया, मुरली भी बजाता है, बस ये तो मैं पहचान लूंगा जरूर। तो वक्ता ने बोला कि आपको जरूर मिलेगा जब आप वृंदावन जाओगे, तो वृंदावन में यमुना के तट में रहते हैं। तो ये सुनकर जाते समय पूरा बार बार बोल रहा था कि वृंदावन और यमुना और कदम कानन मुरली बजा रहे हैं, उनके पास सोना है चांदी है इत्यादि स्मरण करते 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 बोलते बोलते पहुंच गया उधर। जब यमुना के तट में जा पहुंचा, क्योंकि उसके मन में इतना अपेक्षा थी भगवान को मिलने के लिए, तो भगवान मिल ही गए। देखिए इस दुनिया में आप जिस चीज को ढूंढते हो वो आपको मिलता है, कोई अगर स्त्री को ढूंढ रहा है तो स्त्री मिलती है उसको, कोई सोना चांदी ढूंढ रहा है तो सोना चांदी मिलता है उसको, कोई फॉरेन चांस ढूंढता है तो फॉरेन चांस मिलता है उसको, कोई भगवान को ढूंढ रहा हो तो भगवान मिल जाते हैं। हम जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, हम कसरत करते हैं, पसीना छूटते हैं, वो प्राप्त ही हो जाता है हमको। और खास करके श्रद्धापूर्वक इसने भगवान की संबंधित विषयों के बारे में स्मरण करते हुए गया था, तो भगवान उधर खेल रहे थे यमुना के तट में, पहुंच गया, सोचा कि ये तो छोटा बालक है, इतना अच्छा अच्छा आभूषण पहना है, नेकलेस पहना है, कंकण पहना है, नूपुर पहना है, मैं सब कुछ नहीं उठाऊंगा, ये नेकलेस बहुत महंगा दिख रहा है, ये तो 20 लाख रुपया का दिख रहा है, इसको उठा लूंगा। तो 2 रुपये के केला खरीद लिया है और उसको जाकर कान्हा के पास दिया है। हे बच्चे केला खाओगे? तो कृष्ण ने केला लिया, क्यों नहीं, प्रेम से दे रहे हो, क्यों नहीं खाऊंगा, दे दो। तो ले लिया, तो केला खोल कर भगवान कान्हे ही जा रहे थे, तो अपने हाथ लगाया किसके ऊपर, नेकलेस के ऊपर लगाया, तो भगवान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, बोला कि ये नहीं उठा सकते तुम, क्योंकि माँ यशोदा पूछेगी मुझे नेकलेस की तरह पूछेगी ना। तो उनके हाथ का स्पर्श होते ही उसके शरीर में ऐसे 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है ना, ऐसे ऐसे एक आध्यात्मिक शॉक लग गया उसको, तुरंत वो जमीन में गिर गया, उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, जमीन में लोटपोटने लगा वो। तो भगवान ने देखा कि रो रखा है, उसको बोला अरे रो मत, रो मत, ठीक है मैं दे दूंगा, आ जाओ इधर, अभी चाहे तो दे देता हूँ। वो बोले अरे कुछ नहीं चाहिए हमको, अरे तुमने मांगा था इसलिए तो रो रहे हो ना, अरे आप नहीं समझोगे मैं क्यों रो रहा हूँ। तो उसको कृष्ण के ऊपर क्या हो गया, प्रेम लग गया उसको, प्रेम का चस्का लग गया उसको, अभी कुछ नहीं चाहे था उसको। तो वो जो गया था डाकू भगत वृंदावन में ही भक्त बन गया वो, उधर ही तिलक पाना शिखा रखा, भजन करने लगा, यमुना के तट में ही उधर ही शरीर छोड़ा उसने, भगवान प्राप्त हो गए उसको। तो ये कथा से क्या पता चलता आपको, एक बहुत ही खेतु के साथ गया, वो बहुत ही खेतु भी मिल रहा था उसको, साथ साथ कृष्ण भी मिल गए। अभी कृष्ण के श्रीचरणों से मधु बहता है, बहुत उसमें स्वाद है, जो लोगों ने उसको चख लिया हो वो लोगों को दुनिया के छोटे मोटे चीज फीके पड़ जाते हैं, ऐसा तो ब्रह्मा की पदवी भी उनको लगता है कि ब्रह्मा और इंद्र का पदवी भी कीड़ा जैसा है, ऐसे भक्तों को लगता है, वो लोग परवाह नहीं करते हैं ऐसे। तो इस तरह भगवान बोलते हैं गीता में कि जो मेरे पास आते हैं उनको मैं भगवत धाम में ले लेता हूँ, लेकिन जो देवताओं के पास जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन स्वर्ग हो नरक हो दोनों ब्रह्मांड के अंदर ही है ना, इसलिए वो लोग प्रलय काल में सब देवता भी मिट जाते हैं, देवता के भक्त भी मिट जाते हैं, उनके भेंट भी मिट जाता है, सब प्रलय काल में भूतवा भूतवा प्रलय से मिट जाता है, लेकिन जो ब्रह्मांड को छेद कर ब्रह्मांड को पार करके अनंत कोटि ब्रह्मांड को पार करके पर व्योम जो आध्यात्मिक जगत है उधर पहुंच जाता है वैकुंठ में, वो कभी भी यदगतवा नानीवत कभी आएगा नहीं। और यश सर्वेश भूतेश नश्यत्सु ना विनश्यति, ये दुनिया में सब नाश होगा लेकिन वो दुनिया कभी भी नाश नहीं होगा, इसलिए नश्वर दुनिया में तुम वरदान प्राप्त मत करो, तुम ऐसी दुनिया में जाओ जो दुनिया कभी भी नाश नहीं होगा, ये भगवान का उपदेश है गीता में। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं कि देवताओं की पूजा अगर तुम करते हो, देवता जो तुमको बेंट देते हैं वो बेंट मैं ही उनको देता हूँ, ये बहुत बड़ा मर्म है, लोग जानते नहीं है। तो आप पूछेंगे देवताओं को भगवान क्यों बेंट देते हैं हमको देने के लिए, भगवान बोलते हैं कम से कम तुमको वैदिक संस्कृति की ओर आकर्षण है, ठीक है देवता की पूजा करना तो करो, कुछ जन्मों के बाद मेरे पास आओगे, लेकिन देवान देवे जो यांति मद भक्ता यांति मामापि, तुम देवताओं की पूजा करोगे तो उनके पास जाओगे, मेरा पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। तो ये बात को सिखाने के लिए ही कृष्ण ने ब्रजवासियों को ऐसे पाबंदी किया कि आप लोग गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो, ये भी चीज सिखाते हैं भगवान है। ये जानो कि अभी इंद्र ने ब्रजवासियों को तंग करने के लिए कितना प्रयत्न किया, कर पाया क्या वो, जैसे हम बोलते हैं ना जाको राके साइया मार न सके, बाल न बांका कर सके, है एक बाल का बांका भी नहीं कर पाया इंद्र, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया ना अपने हाथ के ऊपर धारण कर लिया। तो आप देखेंगे सब ब्रजवासी उनके पास गए थे आश्रय के लिए, भगवान के पास, बहुत सुंदर। हम इसका बाकी जो पाठ है उसको हम कल देखेंगे, हम कल हम इसको पूरा करेंगे, क्योंकि आज के सत्र में मैंने क्या क्या बताया आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ अभी, शुरुआत में मैंने बोला कि कृष्ण वो यज्ञिक ब्राह्मणों की स्थिति देखकर अभी आए हैं इधर, तो इधर भी यज्ञ चालू है। किधर? वृंदावन में भी। तो उधर यज्ञिक ब्राह्मण लोग पूजा पाठ में मग्न हो गए रीति रिवाज में, लेकिन वो भगवान की भक्ति को भूल कर वो रीति रिवाजों में डूब गए वो। लेकिन उनकी पत्नियां शुद्ध भक्त हैं, वो रीति रिवाज से ऊपर उठ गई, कृष्ण की भक्ति में जुड़कर कृष्ण की दर्शन अभिलाषी भी थी, दर्शन प्राप्त भी किया उन्होंने। तो भगवान उनको उपदेश भी सही ढंग से देकर छोड़ा उनको, उनको बोला कि मेरे दर्शन से भी, मेरे सानिध्यता से आपको मैं प्राप्त नहीं करता हूँ। कैसे प्राप्त होता हूँ? मेरे बारे में श्रवण करने से, और मेरे ऊपर आपको जब विरह भावना और भक्ति पैदा होता है तब मैं प्राप्त होता हूँ। तो उनको उपदेश देकर भगवान आए हैं। अभी वृंदावन वासियों को भी वही सिखाना चाहते हैं कि ये याग यज्ञ इत्यादि जो है देवताओं के लिए आप लोग करते आए हो, तो इस साल आप गोवर्धन की करो, इस तरह भगवान ने उसको डाइवर्ट किया, वो बात एलाबरेटली बोला हमने। और ब्रजवासी तो कृष्ण के अनुयायी थे स्वाभाविक रूप से, वो तो कृष्ण के लिए ही जीते हैं, वो कृष्ण उनके लिए प्राण है। माखन बनाते हैं कृष्ण के लिए, दूध दुहते हैं कृष्ण के लिए, सुबह उठते हैं कृष्ण को देखने के लिए, रात को सोते हैं कृष्ण का स्मरण करते हुए, दिन में भी विविध क्रियाएं करते हैं। सब लोगों के केंद्र बिंदु कौन है? कृष्ण है। देखिए हमारे इस्कॉन संस्था भी एक शुद्ध भक्ति का संस्था है। प्रभुपाद ने हमको क्या सिखाया? हमको बहुत बड़े पंडित बनने की जरूरत नहीं है। जैसे सुबह उठते समय कृष्ण कृष्ण बोलते उठने का, सोते समय कृष्ण बोलकर सोने का, खाते समय कृष्ण का नाम लेकर प्रसाद खाने का, और भगवान के दर्शन करना है, नाचते हुए कृष्ण का नाम गाना है, कोई सन्यासी आ गए तो हरे कृष्ण गाकर स्वागत करने का, अगर सन्यासी वापस लौट रहे हैं तो हरे कृष्ण गाकर विदा देने का। तो सरल मार्ग है। सब चीजों को करने के लिए हमको एक ही जोड़ना है, क्या है? कृष्ण के नाम। तो पहले नाम जोड़ने के लिए सीखना चाहिए हमको, सब कार्य भगवान के नाम से जोड़। जैसे ध्रुव महाराज ने देखा वैकुंठ लोग, वैकुंठवासी आ गए उनको लेके जाने के लिए विष्णुदूत, तो उनको देखते ही इनको लगा कि अभी इनको स्वागत कैसे करना है, बड़े लोग चमक रहा है इनका शरीर, इतने महान लोग हैं, वैकुंठ विमान भी चमक रहा है, ये लोग आ रहे हैं, तो उनको पता नहीं लगा कि सही ढंग से क्या रीति रिवाज करना होता है मालूम नहीं। तो उन्होंने क्या किया, हाथ ऊपर करके हरिनाम गाया बस। आपको कुछ भी मालूम नहीं तो क्या करने का? हरिनाम गा देने का। अगर आपको कुछ मंत्र, बड़े मंत्र मालूम है, अगर किसी मंदिर में जाते हैं आप, क्या श्लोक बोलना है मालूम है, क्या बोलने का? हरे कृष्ण बोल देने का, दंडवत करने का, हरे कृष्ण बोलने का बस। तो इस तरह हम कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएंगे। ब्रजवासी लोगों ने वही किया, कृष्ण की बात मानकर जो चलता है उनको कुछ भी चिंता, दूसरा चिंता नहीं है। एक श्लोक बोलते हैं शुक्राचार्य, मंत्र दस तंत्र दस छिद्रम देश काल अर्घ वस्तुतः सकलम करो ते निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। ये भगवान वामन देव आपके संकीर्तन जो करता है उसके जीवन में जो भी छिद्र होगा वो सब भर जाता है, उसमें कुछ त्रुटि नहीं रहता, ऐसे बताते हैं। कभी कभी वैदिक मंत्रों में उच्चारण में गलती हो सकता है, गलत मतलब निकल जाएगा, नहीं तो कुछ सामग्री नहीं होता है, लेकिन हरे कृष्ण करने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके आपके हृदय को लाना है बस। तो ये कृष्ण ने सिखा दिया ब्रजवासियों को। और एक चीज बोला मैंने, इंद्र के अहंकार को उन्होंने मिटाया है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने सोचा कि ये जो देवता है गर्वित हो चुका है, सोच रहा है कि यही मालिक है, यही स्वामी है, सारी दुनिया इनके कारण चल रहा है, इसके अहंकार को मिटाना मेरा काम है, इसलिए मैं ऐसे एक लीला रचाऊंगा जिससे ये अहंकारी देवता जो है इसका अहंकार मिट जाएगा। वो असुर नहीं है, वो देवता ही है, लेकिन कभी कभी आसुरी प्रवृत्तियां साधना भक्त के जीवन में भी आ जाते हैं। इस तरह भगवान हम भक्तों को भी सिखाया है कि हम लोगों को सेवा भावना के साथ उनकी भक्ति में जुड़ना चाहिए, और पुरुष भाव नहीं तो अहंकारी प्रवृत्तियां इत्यादि को त्यागना चाहिए। तो ये बोला मैंने, उसके बाद हमने लीला के लिए आपको लीला प्रदर्शनी दिखाया आपको, सुंदर सुंदर पूरा तस्वीर देखा आपने पूरे लीला का। उसके साथ साथ हमने ये भी बोला कि इंद्र ने क्या किया, कैसे बहुत ध्वंस मचा दिया वृंदावन में, लेकिन ब्रजवासियों को कुछ नहीं कर पाया, भगवान ने सुरक्षा प्रदान किया। कल हम लीला को और आगे बढ़ाएंगे, और भी कुछ इस लीला में सुनने लायक है जो हम उस लीला को कल पूरा कर देंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, अनंतराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्तवृंद की, गोवर्धन गिरिधारी की।